ओम शांति। प्रश्नों से पार। आज 30 तारीख अगस्त मास 2018। प्रश्न है, बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। काम के वशीभूत होना अर्थात पांचवी मंजिल से गिरना। श्रीमद् तो जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, परंतु जैसे बुद्धि को क्लियर है कि क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे बहुत नुकसान होता है पुरुषार्थ के लिए और व्यक्तिगत के लिए भी, व्यक्तित्व के लिए भी, ऐसी क्लैरिटी काम के लिए नहीं है कि क्यों बाबा इसके लिए मना करते हैं और क्यों ये महाशत्रु है, क्यों इसके बाद हम पवित्र नहीं रह सकते और पुरुषार्थ नहीं कर सकते, क्या काम से सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं? ये प्रश्न पूछा है। क्या कहेंगे? काम महाशत्रु है। जब काम के वशीभूत हो जाते हैं तो पांचवी मंजिल से नीचे रजिस्टर पर दाग, विकर्म, सारे पुण्य कर्म समाप्त। जैसे योग अग्नि तुम्हारे पाप कर्मी अग्नि को, पाप कर्मों को भस्म कर देती है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जैसे योग अग्नि तुम्हारे विकर्म की अग्नि को समाप्त करते रहते हैं, उसी तरह विषयी भोग भोगने की अग्नि सारे ही पुण्य कर्मों को समाप्त कर देती है। ये इन्वर्टेड कॉमा बाबा के महावाक्य है। तो काम से पांचवी मंजिल से नीचे, पुण्य समाप्त, इनकम समाप्त, अब तक की हुई कमाई समाप्त, रजिस्टर पर दाग। तो ये पूछ रहे हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, पहले नंबर का है तो क्यों है? क्रोध भी तो है, लोभ भी तो है, मोह भी तो है, अहंकार भी तो है। कभी सुना है अहंकार ने सारे पुण्य कर्म भस्म कर दिए? करते हैं, पर ऐसा वाक्य, लोभ ने उसने सारे पुण्य कर्म भस्म कर दिए। क्यों? काम आत्मा की हत्या करता है। क्यों? वो गुप्त महाशत्रु है। क्यों? बॉडी कॉन्शियस ज्यादा होते हैं। क्यों? कर्मों का हिसाब किताब ज्यादा होता है। क्यों? आत्मा की शक्ति वो नष्ट क्यों करता है? बाबा ने उसे हिंसा क्यों कहा? ये दूसरों को हर्ट करता है। दूसरों का छोड़ा, अपना पहले बताओ। क्यों? एक बार करने के बाद फिर बार बार करते हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल स्टेज को भूलते ही क्यों है? आत्मा इज मेड अप ऑफ प्यूरिटी। तो और काम सोल के साथ क्या करता है? खिलवाड़। काम में ओके फिर ओके और तो बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। काम के वशीभूत होना अर्थात पांचवी मंजिल से गिरना। श्रीमद् तो जानते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना है, परंतु जैसे बुद्धि को क्लियर है कि को नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे नुकसान होता है पुरुषार्थ के लिए और व्यक्तित्व के लिए, ऐसी क्लैरिटी काम के लिए नहीं है। बाबा ने क्यों मना किया है? क्यों महाशत्रु है? क्यों पवित्र नहीं रह सकते काम के बाद? क्यों पुरुषार्थ नहीं कर सकते? क्या काम से सारे पुण्य कर्म खत्म होते हैं? यह है प्रश्न। जितने विकार है बाकी, जैसे बताया, सबसे ज्यादा शरीर भान की आवश्यकता काम के लिए है। क्रोध से भी ज्यादा, लोभ से ज्यादा, मोह से ज्यादा। क्रोध के लिए व्यक्ति को यह समझने की जरूरत नहीं कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं। लोभ के लिए स्त्री पुरुष समझने से कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कोई अशरीरी बन के काम विकार में घुस नहीं सकता है। कोई अहंकारी व्यक्ति है तो वो, उसके लिए जरूरी नहीं ये सोचना कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं। वो स्त्री में भी उतना भयंकर हो सकता है जितना पुरुष में है, परंतु कोई ये सोचे मैं आत्मा निर्विकार हूं और फिर काम में प्रवेश कर रहा है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर इसके लिए आवश्यकता है संपूर्ण 100% देहभान की। सबसे ज्यादा देहभान इधर जरूरत है, इसलिए जहां सबसे ज्यादा देहभान होगा वहां सबसे ज्यादा सबसे कम आत्मा की स्मृति होगी, आत्मिक भाव की स्मृति होगी। और इस संपूर्ण देहभान में जो कर्म होंगे वो इतने गहरे होंगे कि सीधा आत्मा के अवचेतन मन में घुस जाएंगे सीधा। क्रोध किया आदमी व्यक्ति भूल गया, क्रोध के संस्कार है निकल सकता है बाहर, परंतु विकार में गया है। ए और बी दो व्यक्ति है, दो के बीच में झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, ये झगड़े फिर भी सुपरफिशियल है, पर यहां जब विकार का संबंध है तो एक गहरा कनेक्शन हो जाता है, गहरा मोह भी, गहरी शत्रुता भी हो सकती है, जो भी। तो इसके लिए सबसे पहला कारण तो है 100% बॉडी कॉन्शियसनेस की आवश्यकता है, इसलिए 100% आत्मा की प्यूरिटी डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरा, इट इज वेरी डीप, बहुत गहरा है काम, इसके लिए उसके जो इंप्रेशंस पड़ेंगे वो भी बहुत गहरे पड़ेंगे, जो कि लंबा समय तक आत्मा को याद रहेंगे। 10 साल का योगी जीवन, उसके बाद में वो इंप्रेशन अगर वो ट्रिगर आ जाए यहां का तो वो वापस निकल सकते हैं। 30 साल के योगी जीवन और 30 साल पहले विकारी भोग थे कहीं, 30 साल सेवाओं का जीवन, समर्पण का जीवन, पर उसके बाद में भी वो वही है, उसको कुछ खास किया नहीं है, तो वो निकल कर बाहर आएगा। आत्मा अगर ऐसी गोल है, इमेजिनेशन, हमने आगे का देखा, आगे का साफ किया, पर पीछे में वो कहीं काली रह गई है, पीछे कहीं ना कहीं किसी एक छेद में कुछ ना कुछ फंसा है। हम तो सोच रहे हैं हम बहुत अच्छे, पर ये आया कहां से फिर? वो पीछे की साइड क्लीन नहीं की थी। सर्वांगिक पुरुषार्थ, संपूर्ण क्लींजिंग, संपूर्ण पवित्रीकरण इस आत्मा का हर तो हर ओर से, क्योंकि अगर इच्छा उत्पन्न हुई, वासना ने उत्पन्न आई, मतलब वो आई कहां से? जरूर आत्मा अभी भी प्यूरिटी नहीं उस, और ये योगी के अहंकार को धक्का है। योगी सोचता है मैं और ये, इसके लिए योगी को ब्रह्मचर्य एक ऐसी साधना है, जब जब किसी को ब्रह्मचर्य का अहंकार आया तब तब वो गिरता है, जब जब किसी को प्यूरिटी का अहंकार आया, होलियर देन थाउ एटीट्यूड इंग्लिश में कहते हैं, तुमसे ज्यादा पवित्र मैं हूं, ये भाव आते ही वो जो पुरानी वासना, इच्छा, तृष्णा, कामना, भोग, भोग की स्मृति या ट्रिगर, वो निकल कर बाहर आएगा और उसको धड़ाम से नीचे गिरेगा, और फिर उसके अहंकार को बहुत जबरदस्त चोट लगेगी। बाकियों के अहंकार को इतनी नहीं लगेगी, दूसरे ब्रह्मचारी, पर वो ब्रह्मचारी जिसको ब्रह्मचर्य का अहंकार था, धड़ाम से नीचे गिरेगा और फिर उसको उठने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए देहभान है, बहुत गहरा है, और उसकी जो यादें है लंबा समय तक चलती है, थर्ड रीजन। उसकी जो स्मृतियां है, काम की स्मृति, लंबा समय चलती है। कल क्रोध किया 10 दिन में भूल गए, पर कोई काम में उतर रहा है, विकार की चक्की में पिस रहा है, उसका मेमोरी, रिमेम्बरेंस, स्मृति लंबा समय है, इसलिए काम महाशत्रु है। भगवान केवल एक ही काम करने आया है इस धरती पर, क्रोधी को अक्रोधी बनाने नहीं आया, अहंकारी को निरहंकारी बनाने नहीं आया, लोभी को अलोभ में ले जाने नहीं आया, चोर को अचोर्य में ले जाने नहीं आया, परिग्रही को अपरिग्रही बनाने नहीं आया, पतित को पावन बनाने आया। पतित क्रोधी को नहीं कहा जाता, प्रतित कामी को कहा जाता है। काला मुंह करना क्रोधी के लिए नहीं कहा गया, 5वीं मंजिल से गिरना क्रोधी के लिए नहीं कहा गया, काम विकार के लिए कहा गया है। क्योंकि काम विकार ने ही देवताओं को गिराया। सबसे पहले किसने गिराया? देवताओं को क्रोध ने कि लोभ ने कि मोह ने? काम। काम शास्त्र भारत में बना, विदेश में नहीं। ये इधर बना, कोक शास्त्र। वो कोक जो आया था वो इधर था, वात्सायन कोक सारे इधर थे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले देवताओं का ही पाठ है नीचे गिरने का, देवभान में आने का, मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, ये भान आया और फिर विकार। उसके पहले सतयुग त्रेता में भी विवाह है, स्वयंवर है, शादी है, बच्चे हैं, पर विकार नहीं है। आत्मा में पावर बहुत ज्यादा है वहां, इसके लिए विकारों का कोई आकर्षण नहीं है। जितना अधिक देह आत्माभिमानी स्थिति, विकारों का जीरो आकर्षण। जितना कम आत्माभिमानी स्थिति, विकारों का अधिक आकर्षण। अधिक परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं, आत्मा की स्थिति से लेना देना है। तो काम बहुत तेजी से नाश करता है, बहुत तेजी से। वो 1200 ने, क्या कहते हैं उनको, नेडीज या नाडीज, नेडी नेडी, 1200 नेडी और 1300 नेड़ा, ऐसी कहानी है कि जिसमें चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य है, उनके जो साथी थे, नित्यानंद, नित्यानंद का बेटा था वीरभद्र, उसके 1200 शिष्य थे और दे वो सारे जो थे नेड़ा थे। नेड़ा अर्थात मुंडन किया हुआ। 1200 ब्रह्मचारी थे वो, और उनकी पावर इतनी ज्यादा थी और उनकी इतनी ख्याति होने लगी थी वो 1200 जो ब्रह्मचारी थे, कि इस वीरभद्र को भी चिंता होने लगी जो उसके शिष्य थे, क्योंकि वो जो बोलते थे वो हो जाता था। बैठ जाते थे समाधि में तो पानी ऊपर से बहने लगता था, फिर भी उनको कुछ नहीं होता था। ऐसी उनकी सिद्धियां होने लगी, इतना नाम होने लगा, उसको लगा इनको कुछ करना चाहिए, अब मैं जा रहा हूं नीचे। तो वो लोग थे, हाँ 1300 थे, सॉरी 1300 नेड़ा, नेड़ा कहते हैं उनको, वो 1300 नेड़ा थे। तो उसने 1200 नेड़ी जो ब्रह्मचारिणी थी उनको अलग से तैयार किया और फिर इनको एक दिन कहा कि सुबह स्नान वगैरह करके तुम्हें मेरे पास आना है। तो ये 1300 लोगों को समझ गया क्या होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो उसमें से 100 लोग भाग गए, ताकि गुरु की आज्ञा नहीं तो उल्लंघन करनी पड़ेगी उन्होंने, क्योंकि फिर वो इन 1300 को बुलाता है तो 1200 ही होते हैं। तो उनको कहता है ये जो 1200 कन्या है ना, इनके साथ तुम्हें शादी करनी है सबको। और उनकी वो सब कहते जैसे गुरु जी आप कहेंगे, सबकी शादी होती है और सबकी स्पिरिचुअल पावर्स धीरे धीरे खत्म हो जाती। सत्य घटना। ये जो जो नेड़ा और नेड़ी, इस कहानी को कहा जाता है 1200 और 1300 नेड़ा नेड़ी, और वो 100 जो होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी जो पावर है वो ब्रह्मचर्य की शक्ति है। इसको यदि खो दिया तो हम जो बोल रहे हैं, जो बोल में पावर है वो चली जाएगी, जो तप की शक्ति है वो चली जाएगी। इसके लिए वो 100 भाग जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसके लिए अहंकार, अहंकार, अहंकार एक ऐसी चीज है जो कुछ भी करा सकती है व्यक्ति से, कुछ भी करा सकती है। क्योंकि जब अहंकार आहत होता है तो फिर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जैसे एक राजा है, फॉर एग्जाम्पल, एक राजा है, उसका अपना अहंकार होता है। उसके राज्य में कोई एक समस्या आई कोई लेकर, पर राजा का अहंकार न्याय से भी बड़ा है। वो अपने अहंकार की रक्षा के लिए अन्याय भी कर सकता है, क्योंकि उसका अहंकार हर चीज से बड़ा है। व्यक्ति का अहंकार ऐसी चीज है कि उसके सामने वो अपनी पत्नी बच्चे सबको भी खत्म कर सकता है, मार सकता है, उनको झूठा साबित कर सकता है। अहंकार एक ऐसा, इसके लिए तो उसको अंतिम कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और अहंकार ऐसी चीज है कि वो तो भगवान को ही आना पड़ता है लास्ट में, दिखाया है। बाकी सबको तो सबने मार दिया, रावण को तो राम ने ही मारना पड़ा, लक्ष्मण नहीं मार सकता राम को, रावण, क्योंकि रावण प्रतीक है अहम का, अहंकार का। तो चाहे कितना भी स्पिरिचुअल हाइट पर व्यक्ति पहुंच जाए, पर जेलसी होती है। अगर कोई शिष्य उससे भी आगे जा रहा है तो गुरु को जेलसी होने लगती है कि मेरा शिष्य, मैंने जिसको तैयार किया, अब लोग इसके पीछे है और मैं छूट गया। तो ये कहानी को कहा जाता है 1300 नेड़ा और 1200 नेड़ी। ये तो सनातन गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु, उनके जो साथी थे, चैतन्य महाप्रभु थे 13वीं शताब्दी। चैतन्य महाप्रभु के बाद में फिर भक्ति की लहर चली। तब तक तो शंकर का मायावाद चल रहा था, भक्ति खत्म हो चुकी थी। भक्ति का आगमन भारत में जो हुआ शंकराचार्य के बाद, शंकराचार्य आया, भक्ति ऑलमोस्ट खत्म हो गई, सन्यास, निवृत्ति मार्ग चालू हुआ। चैतन्य महाप्रभु आया, तब से फिर से भक्ति चालू हुई। फिर चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करने वाले मीरा, तुलसीदास, सूरदास, और भक्ति की लहर साउथ में और उत्तर भारत में दौड़ी। भक्ति का उगम स्थान है चैतन्य, चैतन्य में। इसमें एक प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न। तो यह था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, 26 जून 1969 की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, आते उसमें एक मुरली का रेफरेंस दिया है जिसमें बाबा ने कहा, यह हमने कई बार कोट भी किया है क्लासेस में, वह कोर्स था उसी तन द्वारा पाठ पूरा हो चुका, अभी तो आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए। फिर परंतु डीप नॉलेज तो बाद में आया, फिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा? इनका प्रश्न है कि 69 में बाबा कह रहे, बच्चे ज्ञान पूरा हो चुका है, कोर्स पूरा हो गया है, अब बाबा आते हैं मिलने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं आते, ज्ञान सुना चुके हैं। पर ये कह रहे कि डीप नॉलेज तो अव्यक्त मुरलियों में आया। अब बोलो, सव्यक्त वाणियों का नाम क्या है? सबसे पहले रिवाइज्ड कोर्स, रिवाइज्ड अर्थात रिवीजन, रिवीजन अर्थात फर्स्ट रीडिंग नहीं, पहला कोर्स हो चुका है, ये रिवीजन कोर्स है। वो तो मुरलियों में आ चुका है, आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, पर ये समझाने के लिए ये सारी अव्यक्त वाणी है। अव्यक्त मुरलिया जो है वो फिलोसॉफिकल है बहुत, मतलब एक जैसे कोई थीसिस है, उसका वो टॉपिक है, उस टॉपिक का अव्यक्त मुरलिया थीसिस है, पीएचडी है, उसका एक्सप्लेनेशन है वो। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ब्रह्मा बाबा ने कौन सी अव्यक्त मुरली सुनी, मम्मा ने कोई अव्यक्त मुरली नहीं सुनी। 69 से पहले जो यज्ञ में आदि रतन हुए हैं, उन्होंने क्या अव्यक्त मुरलियां सुनी क्या, जो हम सुनते हैं इतनी गहरी गहरी? वो तो बिना अव्यक्त मुरली सुने ही संपूर्ण बन गए। कैसे? क्योंकि उन्हीं में सब कुछ है, साकार मुरली इज कंप्लीट, सब कुछ है उसमें, वो खाली उसका एक्सप्लेनेशन है। और अव्यक्त मुरलियों में है भी क्या, वो एक वर्ड ले लिया वहां से, रूहानी, जादूगर, चित्रकार, और पूरी मुरली उस पर चल रही है। एक्स्ट्रा चर्निंग, एक्स्ट्रा ट्यूशन, या जो बाद में आने वाले हैं उनके लिए थोड़ा उसको और विस्तार से। नहीं तो, क्योंकि एक साकार मुरली में कम से कम 20 टॉपिक्स होते हैं, 15 से 20। अव्यक्त मुरली में एक ही टॉपिक होता है केवल, लगभग एक ही टॉपिक पर पूरी मुरली चलती है, एक ही टॉपिक। जैसे अभी जो मुरली चली संडे की ले लो फॉर एग्जांपल, माशूक आशिक, क्या करता है माशूक आशिक के साथ, पूरा उसका चल रहा है। इसमें क्या आएगा, बीच में एक लाइन आएगी, माशूक बाप तुमसे आशिकों से मिलने आया, बीच में आएगा धोबी आया है साफ करने, फिर आएगा बागवान भी आया है, उधर बागवान पर एक पूरी मुरली चलेगी, उस बागवान को समझाने के लिए बागवान करता क्या है वो मुरली चलेगी, विथ एग्जाम्पल्स, इस संसार के एग्जाम्पल्स बाबा लेते हैं ना, यहाँ के एग्जाम्पल, वहां के एग्जाम्पल, यहाँ वहां। ज्ञान निराकार है, उसको कैसे समझाया जाए, नॉलेज इज एब्स्ट्रैक्ट। उसको समझाने के लिए संसार के खूंटियों का, संसार के उदाहरण लो और टंगाओ अपनी पॉइंट्स। बाबा इस संसार के उदाहरण लेकर अपनी पॉइंट्स टंगाते, कौन सा झूला, कोई झूला होता है क्या यहाँ, कोई झूला है अतीन्द्रिय सुख, कोई झूला है ही नहीं, कौन सा प्लेन स्विच ऑन करो स्मृति का, कौन सा स्विच, कौन सा पेट्रोल, रिफाइंड पेट्रोल, कुछ ये है ही नहीं, सब निराकार है। कौन सा डांस, यहां कोई डांस है क्या, हाथ सब निराकार है। कौन सा खजाना, तुमको खजाना मिला है, कहां है खजाना दिखाओ, है ही नहीं कुछ, एब्स्ट्रैक्ट है नॉलेज, नॉलेज इज एब्स्ट्रैक्ट, निराकार। उसको समझाने के लिए, क्योंकि हम उस लेवल पे समझ नहीं सकते उसको, हमारी भाषा में बोलचाल की भाषा में चाहिए वो ज्ञान। हम जैसे हम चीजों को देखते हैं, ये पेन है, बाबा ने कहा रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर, यहां रजिस्टर है क्या आत्मा में कोई, दाग, कौन सा दाग, उसको मिटाओ, कहां से मिटाए, वैक्यूम क्लीनर, कुछ कुछ ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं सब मुरलियों में। तो दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, जो सारा ज्ञान है वो साकार में समझा दिया है, पर तुम वो बाबा उसका चिंतन सुना रहे इन वन वे, साकार का अव्यक्त मुरलिया चिंतन है, एक्सप्लेनेशन एक्सपोजिशन थीसिस का विस्तार बस। इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता है अरे साकार मुरलिया में तो कुछ भी नहीं है, वही वही बाप आए हैं तुमको ले जाने, विनाश सामने खड़ा है, विनाश पर मुरली चलेगी ना, हाँ ये बहुत बेगहरी है, इसमें बहुत गहरा गहरा पॉइंट्स, वो गहरी नहीं लगती है कि विनाश सामने खड़ा है, मौत का बाजार गर्म होगा, होलसेल मौत होगी, वो तो एकदम ऊपर ऊपर लगता है। सरसों मिसल पीत जाएंगे, टिड्डियों मिसल, मच्छरों मिसल जाओगे, ये सब बहुत साधारण लगता है, पर कोई एक मुरली, अरे बाप रे उसमें विनाश, ये है गहरी मुरली। हमें तो साकार ही ज्यादा गहरी लगती है, साकार में ही इतनी पॉइंट्स है कि एक पॉइंट पढ़ो और रुको और फिर चिंतन करो, कितनी हजारों पॉइंट्स निकल के आती है उसमें से, इतनी सारी लहरें, वो तो मुश्किल हो जाता है कभी कभी, पूरा कैसे पढ़े ऐसा प्रश्न होता है, एक ही इतना इसमें इतना सारा है। तो ये था दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, हम सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या मुझे आईएएस या स्टेट लेवल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए? एक मन कहता है बाबा को प्रत्यक्ष करना है, आईएएस बनकर ज्यादा सेवा कर सकता है, स्पीकर लोगों को ला सकते हैं, वहां वह यही भी लगता है कि आईएएस बनकर लाइफ बिजी हो जाएगी, मन में एक इच्छा है कि एक बार एग्जाम एग्जाम को क्लियर करना है, दूसरी ओर मन कहता है क्या करोगे नाम मान शान, थोड़ा कंफ्यूजन है, कृपया क्लियर कर उचित मार्गदर्शन करिए। क्या करे बोलो अब, हेड एंड टेल, अच्छा क्या करो, एक तरफ करियर, दूसरी तरफ योगी जीवन, क्या करना है दोनों का। एक तरफ कहता बहुत पढ़ू बहुत पढ़ू बहुत पढ़ू, ये भी करूं वो 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 भी करूं, दूसरी तरफ ज्ञान कहता है तुम्हें वैराग आना चाहिए, तुम्हें क्या करना है ये टोकरी विक्री इधर का, हाँ नौकरी की टोकरी, तुमको क्या करना है। धन का सबसे ज्यादा फायदा कौन सा है बताए, धन की व्यर्थता को समझना। धन की व्यर्थता तभी समझ में आती है जिसके पास धन है। विदेश और देश विदेश में घूमने का फायदा क्या है बताएं? एक लेखक ने लिखा है कि मुझे अपने देश का महत्व तब समझ में आया जब सारे विश्व भर में घूमा, तब समझ में आया मैं जिधर पैदा हुआ वो गांव कितना महान है, ये फायदा है घूमने का, ये फायदा है धन का। और दूसरी बात, यदि कोई इच्छा है लौकिक की और उसको दबा दी जाए और छोड़ो ये सब चलो मधुबन हमेशा यहीं, तो यहां फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे फिर, क्योंकि इच्छा तो रही ना, इच्छा को पूर्ण नहीं किया, कर लो पूरा, बन जाओ आईएएस, हम चीफ गेस्ट करके बुलाएंगे आपको प्रोग्राम में। पर ये जो एग्जाम्स है इस तरह की वो इतनी आसान भी नहीं है, बहुत ज्यादा कमिटमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा स्टडी चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें डेडिकेशन चाहिए, दिन रात पढ़ना पड़ता है उसमें। और दूसरी बात, इस तरह की जो सर्विसेज है वो कहां सर्विस मिलती है फिर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फिर वहां पर बहुत सारे टेम्पटेशंस है, बहुत सारे टेम्पटेशंस है, और एक व्यक्ति जो निकल पड़ता है कि मैं सारी सिस्टम को बदल दूंगा, सिस्टम उसको बदल देती है एक दिन। क्यों चेंज होते हैं एसडीएम? तो ये मार्ग तो वैसे बहुत अच्छा है, परंतु सोचने की बात है कि जिनको बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना है। और एक बात तो है, आपने सब कर लिया, बाद में ज्ञान मिला, फिर ठीक है, पर जो अभी इस यहां खड़ा है कगार पर, उसको सोचना है कि मैं पुरुषार्थ करूं या ये करूं, क्योंकि वो करना अर्थात ये सब छोड़ना पड़ता है ज्ञान योग, अगर उसमें आगे जाना है, अव्वल आना है, नंबर लेना है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज्यादा डेडिकेशन। पर हां, अगर किसको करना ही है तो फिर उसके लिए हम एक बात कहेंगे, एक अमृत वेला करना, अमृत वेले के बाद मुरली पढ़ना, बस, नो सेवा, नथिंग। अमृत वेला करना, उसके बाद में मुरली पढ़ लेना, थोड़ा सा चिंतन करना, ज्ञान योग अर्थात ये 2 घंटा बस, फिर कुछ नहीं, फिर बाकी सब छोड़ दो, अगर इसमें आगे जाना है तो। क्योंकि ये पढ़ाई, आप सोचेंगे मैं सेंटर पर जाकर सेवा भी करता हूं, मधुबन में सेवा भी करता हूं, तो ये पढ़ाई के लिए टाइम कहां मिलेगा फिर? अगर पढ़ना है स्टूडेंट्स को तो जस्ट अमृत वेला करो, 1 घंटा मुरली पढ़ो, फिर उसके बाद में दिन रात पढ़ाई में लग जाओ, फुल डिवोशन, कुछ नहीं करना, नो सेवा, फॉरगेट ऑल सेवास, और उसमें फिर आगे बढ़ो। और फिर ये लक्ष्य रखो कि ये मैं पढ़ भी रहा हूं इसलिए कि मुझे इस लौकिक से अलौकिक प्रत्यक्ष करना है, ये लौकिक से विश्व की सेवा करना है, क्योंकि उस मार्ग में इतना टेम्पटेशन है आगे कि जो ये निकल भी जाता है उसमें से भी अच्छे अच्छे फंस जाते हैं उसमें। कितने तो यहां से ही, हमको पता है, हॉस्पिटल से ही कितने लोग गए पढ़ाई करने के लिए, आए नहीं वापस। कितने लोग डॉक्टर्स, नर्सेस, कितने लोग थे जिन्होंने, कईयों को तो हॉस्पिटल ने भेजा यहां से खर्चा करके, वो भी वापस नहीं आए, क्योंकि वहां दुनिया में तो इतना टेम्पटेशन है, विदेश का इतना टेम्पटेशन है, मिडल ईस्ट में जाओ डॉक्टर वगैरह चले जाए, जितने मुंबई में जितने लोग नर्सेस है, जितनी हॉस्पिटल्स में, उन सबका एक ही लक्ष्य है, वो मिडल ईस्ट में जाना, सबका, जितनी नर्सेस है वहां पर, सब लोग मतलब तैयारी में ही है। सब लोग तैयारी में है, क्योंकि वहां जितना पेमेंट, यहां जितना डॉक्टर को नहीं मिलता, वहां उतना नर्सेस को मिलता है, 80,000 से चालू होता है पेमेंट उधर, और यहां उनको कहां 10,000-12,000 मिल रहे, सब कुछ फ्री उधर, तो उनका तो लक्ष्य ही है, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि ये तो ठीक है आईएएस, पर उसमें फिर जितना कमाई और नया नया आते जाएगा ना, तो उसमें फिर टेम्पटेशन होते जाएगा, और व्यक्ति रोक नहीं पाता फिर उसको, सोचता है बाबा के लिए करेंगे, सेवा अर्थ लगाएंगे, आने दो ना, सेवा अर्थ लगाएंगे, तो वो बहुत बड़ी माया बन जाती है फिर। पर फिर भी अगर किसको करना ही है तो जैसे बताया, 1 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा मुरली, उसके बाद में फुल डिवोशन, भाव ये रखना कि इससे मुझे अलौकिक प्रत्यक्ष करना है, और जब बन जाएंगे और नंबर लग भी जाएगा, तब फिर संपूर्ण ऑनेस्टी और बाबा को प्रत्यक्ष करना और सब कुछ। हमने देखा ऐसे 2-3 सेवा केंद्र पे गए थे हम, तो वहां पे देखा जो वहां के जो मेन पर्सन है कमिश्नर, या वो सीधा ब्रह्मा कुमारी के सहयोगी है, और उनके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं हो रही है, बहुत अच्छी अच्छी, इतना परिवर्तन किया है उन्होंने, बहुत कुछ कुछ किया है वहां पर, तो ये हो सकता है, ये भी संभव है, परंतु बहुत ज्यादा अटेंशन की आवश्यकता है इसमें। अगला प्रश्न, 1.5 साल से ज्ञान में हूं, वैज्ञानिक तरीके से समझाए कि योग से विकर्म कैसे विनाश होते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, विकर्म का 100 गुना दंड कैसे मिलता है। तीसरा प्रश्न, बार बार पहली बार बाबा से मिलने पर वरदानों से भरपूर कैसे हो। चौथा प्रश्न, अच्छे से अच्छा अनुभव के लिए किन किन धारणाओं पर अमल करना है। 4 प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक तरीके से समझाएं योग से विकर्म कैसे विनाश होते, क्या कहेंगे? योग बल से विकर्म विनाश कैसे होते? आग है ना, योग तो उससे चीज जल के भस्म हो जाएगी, और जैसे कागज खत्म हो जाता है वैसे, और एकाग्र हो जाती है किरणें सारी तो कागज भस्म हो जाता है, और उसकी बुद्धि डाइवर्ट। जैसे अभी भी बता रहे थे तीन प्रकार के कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म, एक है संचित कर्म। एक है प्रारब्ध कर्म, एक है संचित कर्म, एक है आगामी कर्म। तीन प्रकार के कर्म बताए गए हैं, कई जगह इसका विस्तार से एक्सप्लेनेशन भी है। आगामी कर्म, ये तीन कर्म जो भी है, कर्म अर्थात आत्मा पर इंप्रेशंस क्रिएट होते हैं कर्मों के, परतें बन जाती है बहुत सारी चेतना में, इतनी सारी परतें बन जाती है, अच्छी बुरी अच्छी बुरी अच्छी बुरी अच्छी बुरी अच्छी बुरी अच्छी बुरी, और इन परतों में आत्मा दब जाती है। अब ये जो आत्मा है इसमें जो कर्म अभी वो भोग रही है वर्तमान, वो प्रारब्ध है, जो भोगने वाली है, जो स्टोर्ड है संचित है, और जो बहुत फ्यूचर में जाने वाला है वो आगामी है। तो जैसे ही आत्मा एकाग्र होती है या योग करती है, अशरीरी बनती है, ये ब्रेन है माइंड बॉडी से डिटैच होती है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर जो इनकी पकड़ है इंप्रेशंस की वो कम होने लगती है, वो जो स्मृतियां है वो कम होने लगती है, न्यूट्रलाइज होने लगती है चीजें। जैसे हमने किसी के साथ मिले, किसी गांव में गए, वहां की कुछ यादें हैं बचपन की, फिर हम उस गांव में कभी गए नहीं और अभी 20 साल हो गए, वो कुछ याद नहीं है खास, क्योंकि धुंधला हो गया है, वो दब गया है एकदम, मर्ज हो जाएगा, मर्ज हो गया वो। तो वो जो विकर्म है, वो जो पाप कर्म है, वो सारे मर्ज हो जाते हैं, दब जाते हैं, कम हो जाती है उनकी यादें, या न्यूट्रलाइज होते हैं, वो संस्कारों की पकड़ कम हो जाती है, और धीरे 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 लंबा समय अगर उससे अलग रहे व्यक्ति तो फिर वो खत्म ही हो जाते हैं, बहुत लंबा। विकर्म विनाश की प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है, दीर्घकाल की है। ब्रेन में जो इंप्रेशंस है वो धीरे धीरे, ब्रेन और सोल का बहुत जबरदस्त कनेक्शन है, माइंड ब्रेन का और सोल का, तो ये जो कनेक्शंस है और जो न्यूरल पाथवेज क्रिएट हुई है और जो इंप्रेशंस ब्रेन पर भी है वो अशरीरी अवस्था में भस्म होते हैं। अशरीरी अवस्था में दो चीजें होती है, ऊपर से शक्ति भरती है और जो ऑलरेडी है उसमें वो डिलीट होता है, पास्ट पाप विकर्म कर्म सब कुछ। इसके लिए वो चिंतन मनन से नहीं होगा, केवल योग की अवस्था में होता है अशरीरी में। तो सबसे पहला तो साइंटिफिक तरीका, मतलब पहले तो साइंस तो ये मानता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ है ये विकर्म। हर चीज साइंटिफिक रीति से समझाओ ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि अध्यात्म तो चालू वहां से होता है जहां साइंस एंड होता है। साइंस को तो अभी तक वो सोचा ही नहीं है, साइंस ने वहां तक उसके हाथ ही नहीं पहुंचे जहां अध्यात्म जिस ऊंचाई पर पहुंचा है। भारत के कितने योगी विदेश में गए और उन्होंने ऐसी ऐसी कुछ चीजें करके बताई जो आश्चर्यचकित रह गए, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता। स्वामी रामा जब भारत विदेश में गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस में, तो उन्होंने अपनी हार्ट रेट जो है हार्ट वो बंद कर दिया, ये इनवॉलेंट्री, हम कैसे बंद कर सकते, हम बंद नहीं कर सकते, वो अपने आप चलते रहता है। यहां से ये करो काटो तो खून बहता है, हम नहीं कह सकते खून नहीं बहे, वो ऑटोमेटिक है। उन्होंने ये सब करके दिखाया, वहां के लोग आश्चर्य हो गए, साइंटिस्ट ये कैसे, वो ब्रह्म योगी थे, उन्होंने तो इससे भी बड़े भयंकर भयंकर सारे चमत्कार कर किए। वो तो ऐसे कि लोग ने कहा ये हो ही नहीं सकता और उन्होंने कर दिया। वो साइंस जरूरी है कि हर चीज साइंस से बताई जाए, क्योंकि अध्यात्म क्षेत्र बहुत ऊंचा है, यहां तो चेतना में ऐसी ऐसी चीजें हैं सबसे। और एक दूसरी बात, भारत के ये जो चरक सुश्रुत ये सब लोग थे, उन्होंने शरीर के अंदर की बातें कहां से बताई, क्योंकि भारत में तो ये था कि शरीर को तो जला देते थे वो, तो उधर विदेश के लोग ये जो थे वॉल्टेयर, इन्होंने तो कब्र से बॉडियां खोद खोद के निकाली और उन पर एक्सपेरिमेंट किए डिसेक्शंस, और फिर देखा ये लीवर है ये किडनी है डिसेक्शन करने के बाद। पर क्या सुश्रुता और चरक ये लोगों ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी शरीर की ऐसी गहराई बता दी उन्होंने, एक एक चीज की नाड़ी पे हाथ रखो और डायग्नोसिस कैसे बताएं, शरीर को उन्होंने, क्योंकि उनको शरीर मिलेगा, डेड बॉडीज चाहिए, मेडिकल की स्टडीज में तहत डेड बॉडीज की बहुत ज्यादा आवश्यक है, सारे एक्सपेरिमेंट डेड बॉडी और ये बंदरों बिंदरों पर किए जाते हैं। पहले भारत में तो था ही नहीं, कब्र थी क्या भारत में, किसी को गाड़ते थे क्या, नहीं जला देते थे शरीर को। ऐसा सुना कि शरीर रखा गया, फिर ये चरक सुश्रुत या दूसरे आए और उन्होंने उसको चीड़ फाड़ की, और फिर वो, क्योंकि सुश्रुत ने जो कुछ प्लास्टिक सर्जरी की नोज की, वो अभी के जो MCH का कोर्स है उसमें सिखाई जाती है, उसको कहां से पता चला। अंतरचक्षु अंतरप्रज्ञा, बिना कुछ किए बैठे बैठे ही शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो उनको दिव्य अंतर्दृष्टि से ही पता चला, अलौकिक शक्ति से, छठी इंद्रिय से सब कुछ जाना उन्होंने, पांचवी पांच इंद्रियों से नहीं, छठी इंद्रिय से, सिक्स्थ सेंस से, सिक्स्थ वो जो परसेप्शन है वहां से उनको मिला बहुत सारी चीजें। तो अध्यात्म में हर चीज ऐसा नहीं है कि तुम ये साइंटिफिक बताओ, ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीजें, देर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल होराशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसॉफी। शेक्सपियर का एक पात्र अपने साथी से कहता है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुमने सोची भी नहीं ना, वो भी संसार में है, मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल, अर्थ में और नर्क में, इस ऐसी हजारों चीजें हैं जो मनुष्य ने आज तक सोची भी नहीं है, और वो है और तुम समझ ही नहीं पाओगे कभी। और बाबा ने कहा है इस ड्रामा में कुछ राज हमेशा के लिए राज रहेंगे। तो ये पहला है कि जैसे ही आत्मा डिटैच होती है बहुत सारा डिटैचमेंट हो जाता है, न्यूरल पाथवेज कम हो जाती है, मेमोरीज कम हो जाती है। सेकंड प्रश्न है विकर्मों से 100 गुना दंड कैसे मिलता है। विकर्म करने के बाद पश्चाताप का भाव ही दंड है, उसकी जो मेमोरी है ना वही दंड है। वो सलमान खान के लिए किसी ने लिखा था, अब उसको क्या सजा दे, छोड़ो सजा उसकी पूरी हो चुकी है 20 साल, मेंटल एंगनी एगनी एंग्विश, उसको अभी क्या सजा दोगे, शरीर को जेल में डालोगे, 20 साल से चिंता दर्द भय, वो उस वही पूरा हो गया, यही दंड है। वो कोई धर्मराज ऐसे बैठा नहीं है, 28 प्रकार के स्वर्ग बताए हैं गरुड़ पुराण में, नर्क सॉरी नर्क नर्क स्वर्ग भी है, स्वर्ग 14 प्रकार के है, स्वर्ग के अलग प्रकार है, 28 प्रकार के तो नर्क है, एक एक नर्क में कौन कौन जाएगा उसका पूरा वर्णन है, ये काम किया तो इस नर्क में, ये काम किया तो इस नर्क में, इधर जलाए जाओगे इधर ये कराए जाओगे, सब कुछ डिटेल में है पूरा। तो दंड, तो वो 100 गुना दंड, यही 100 गुना दंड है, पाप कर लिया और गवर्नमेंट में पकड़ा ही नहीं, ठीक है हम बच गए, अब फिर उसका डर, आत्मग्लानी, अपराध भाव, गिल्ट कॉन्शियसनेस, मेंटल एंग्विश एंड द फियर ऑफ द क्राइम, रिजल्ट ऑफ क्राइम, यही भयंकर है, यही दंड है। अगले जन्म क्या, अगले जन्म छोड़ो, अभी अभी इसी वक्त, आज कल रात का ही, कल रात में ही लेट किया सोने को, आज अमृत वेला मिस हो गया, दंड मिल गया ना आज कल रात, उधर का छोड़ो कल का ही ले लो, कल रात में कुछ कर दिया जो नहीं देखना था वो देख लिया और आज अमृत वेला साधारण हो गया। हाँ वो भी चलो उठ 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 भी गया पर एकाग्रता नहीं हुई, दंड यही दंड है। तीसरा प्रश्न है बार बार बाबा से मिल, अच्छा पहली बार बाबा से मिलने से वरदानों से भरपूर कैसे हो, बोलो सुशील भाई। अभी बाबा कब आएंगे, बाबा तो हो गया बाबा का पार्ट वरदान जितना क्लियर रहेगी माइंड इंटेलेक्ट अपने आप वरदान भरते जाएंगे, जितना श्रीमत पर है उसको अपने आप, उसको मांगने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप वरदान मिलते हैं, मांगने थोड़ी ना पड़ते वरदान दो वरदान दो वरदान दो, वरदान के भिखारी थोड़ी ना है बनना है, आशीर्वाद के भिखारी, वरदान के भिखारी, दृष्टि के भिखारी, लिस्ट गिनाई थी ना भिखारियों की, वो भिखारी थोड़ी बनना है, अपने आप वरदान मिलता है। वरदान खोजेगा किसको दू, पात्र को खोजेगा, पात्र को वरदान को खोजना नहीं पड़ता है, जैसे पद जो होता है ना सीट, वो योग्य व्यक्ति को खोजता है, योग्य व्यक्ति को मैं कहा, मेरी कहां सीट है राज दरबार में, पार्लियामेंट में मुझे कहां स्थान दिया जाएगा, ये अयोग्य व्यक्ति ढूंढता है। योग्य व्यक्ति को तो उसकी सीट ढूंढती है, यहां तो वरदान ढूंढेगा मैं किसके पास जाऊं। हाँ ये दिख रहा है गांव में है बहुत, कोई इसको जानता नहीं पर इसी को दूंगा मैं, ये तो ये भोला भाला है, और इधर भीड़ लगी है, वरदान दे दो वरदान दे दो, एक एक पैर पर खड़े तपस्वी बैठे और वो वरदान आ नहीं रहा है, वरदान के पीछे भागे हुए और वरदान भाग रहा है, वो वरदान के पीछे और वरदान आगे और 100 तपस्वी पीछे। कैसा दृश्य है, निखिलेश भाई है क्या चित्र बनाने के लिए? तो बना सकते हैं। वरदान तो खुद डिसाइड करेगा मैं किसके पास जाऊं, मांगना थोड़ी होता है वरदान को। हाँ तो अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप वही अनुभव होगा। वो कोई भाई अनुभव सुना रहा था ना, वो रिपेयरिंग कर रहा था खंबे पर, वहीं पर उसको साक्षात्कार हुआ बाबा का, खंबा था, बाबा आए हुए थे और उसको कहा तुम सेवा करो जाओ, तो उसको वहीं पे उसको कुछ कुछ हुआ, बाबा भी का अनुभव हो गया प्यार पे, वो लाइट का ठीक करते करते खंबे के ऊपर। लास्ट प्रश्न है, अच्छे अच्छे अनुभव के लिए किन किन धारणाओं पर अमल करें? तीन धारण कर लो प्रश्न उसमें हो जाएगा। अच्छी अच्छी धारणा किन, सारा ज्ञान योगी उसके लिए है, कोई भी धारणा ले लो, कोई एक पॉइंट ले लो, उसकी गहराई में चले जाओ, सारे उत्तर वहां है। कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक महावाक्य, एक में सब समाया हुआ है, एक महावाक्य में सारी, एक लाइन छोड़ो, एक शब्द ले लो ज्ञान का, उस एक शब्द में 80 साल का सारा ज्ञान समाया हुआ है, एक ही शब्द में सब कुछ समाया हुआ है। कोई भी एक शब्द, अव्यक्त एक शब्द, पुरुषार्थ एक शब्द, योग एक शब्द, सेवा एक शब्द, इसी की गहराई में चले जाओ तो सारी धारणाएं अपने आप आ जाएगी। ओम शांति।